नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज लाडवा एवं थानेसर हलके की 11 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 70,24,000 रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की। कुरुक्षेत्र में आयोजित गौशाला चारा अनुदान राशि वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जारी की गई राशि को मिलाकर वर्ष 2025-26 में पूरे प्रदेश की 619 पंजीकृत गौशालाओं के लिए कुल 228,58,00,000 रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 11.25 वर्षों में 526,45,00,000 रुपए की चारा अनुदान राशि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय राज्य में 697 पंजीकृत गौशालाएं, जिनमें लगभग 4,00,000 से अधिक बेसहारा गौवंश का पालन पोषण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने गौवंश के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा करते हुए कहा कि सरकार ने गौ माता की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून हरियाणा गौवंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम 2015 लागू किया है।
साथियों, देसी नस्ल की हरियाणा साहिवाल और बेलाही गायों को दूध उत्पादन की क्षमता के अनुसार 5,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक का प्रोत्साहन गोपालकों को दिया जा रहा है। सड़कों पर घूम रही बेसारा गौवंश को पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के प्रति बछड़ा या बछड़ी उसको 300 रुपया और गाय को गौशाला में लाते हैं उसको 600 रुपया और नंदी को पकड़कर लाते हैं तो उसको 800 रुपया मानदेय के रूप में देने का हमने प्रावधान किया है। इसके लिए 4 करोड़ रुपए का बजट भी हमने स्वीकृत किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2026-27 में प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा वाले परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट में 7 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रावधान भी किया गया है। हरियाणा सरकार ने वित्तीय घोटाले के मामले में कार्रवाई करते हुए हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के वित्त निदेशक अमित दीवान को बर्खास्त कर दिया है। उन्हें हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वे निलंबित चल रहे थे। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। बैंक खातों के संचालन में अनियमितता और धोखाधड़ी के इस मामले की जांच अब हरियाणा सरकार द्वारा सीबीआई को सौंप दी गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशभर में एलपीजी वितरकों के यहां आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी के निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयीय बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। चंडीगढ़ के सरकारी बौद्धिक अक्षमता पुनर्वास संस्थान ग्रीड द्वारा हरियाणा योग आयोग के सहयोग से 8 मई तक 5 दिवसीय सामूहिक योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण सत्र का कल शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉ जयदीप आर्य एवं डॉ अजीत सिडाना के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आगामी 10 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव में संबंधित नगर निगम, नगर पालिका अथवा नगर परिषद के वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज वे मतदाता मतदान कर सकेंगे जिन्हें अभी तक मतदाता फोटो पहचान पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे मतदाता अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, परिवहन पहचान पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।